भागवत सार की श्रृंखला में तीसरे स्कंद के 28वें अध्याय पर चर्चा है। कृपया श्लोक दोहराइए। स्वधर्माचरणं सत्या विधर्माच निवर्तनम् दैवालब्धेन संतोष आत्मविचरणाचरणम् स्वधर्माचरणं सत्या विधर्माच निवर्तनम् दैवालब्धेन संतोष आत्मविचरणाचरणम् स्वधर्माचरणं सत्या विधर्माच निवर्तनम् दैवालब्धेन संतोष आत्मविचरणाचरणम् स्वधर्म आचरण, अपने कर्तव्यों का पालन, शक्त्या अपनी शक्ति भर, विधर्मा शास्त्र विरुद्ध कर्तव्य से, च तथा निवर्तनम् बचते हुए, दैवा भगवान की कृपा से, लब्धेना जो कुछ प्राप्त हो उससे, संतोषः संतुष्ट आत्मविद स्वरूप सिद्ध जीव के, चरण पांव की अर्चनम पूजा। अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। मनुष्य को चाहिए कि वे यथाशक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे और उन कर्मों को करने से बचे जो उसे नहीं करने हैं। उसे ईश्वर की कृपा से जो भी प्राप्त हो उसी से संतुष्ट रहना चाहिए और गुरु के चरण कमलों की पूजा करनी चाहिए। तात्पर्य, इस श्लोक में कई ऐसे महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनकी विशद व्याख्या की जा सकती है, किंतु हम हरेक के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की व्याख्या करेंगे। अंतिम कथन है आत्मवित चरणार्चनम। आत्मवित का अर्थ है स्वरूप सिद्ध जीव या प्रामाणिक गुरु। जब तक मनुष्य स्वरूप सिद्ध नहीं रहता और परमात्मा के साथ अपने संबंध को नहीं जानता, वह प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। यहाँ यह संस्तुति की गई है कि प्रामाणिक गुरु की खोज करके उसकी शरण में जाना चाहिए, क्योंकि उससे जिज्ञासा करके तथा उसकी पूजा करके वह आध्यात्मिक कार्यों को सीख सकता है। पहली संस्तुति है स्वधर्म चरणा चरणम। जब तक हम ये शरीर धारण किए हुए हैं तब तक हमारे लिए कुछ कर्मों की संस्तुति की गई है। ऐसे कर्मों को चार सामाजिक श्रेणियों में बांट दिया गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र। इन विशिष्ट कर्मों का उल्लेख शास्त्रों में विशेष रूप से भगवद गीता में मिलता है। स्वधर्माचरणम का अर्थ है मनुष्य को समाज के विशेष वर्ग के लिए संस्तुत कर्मों का पालन श्रद्धा पूर्वक तथा भक्ति भर करना चाहिए। उसे किसी दूसरे का कर्म अपने ऊपर नहीं ओढ़ लेना चाहिए। यदि वह किसी विशेष समाज या जाति में उत्पन्न हुआ है तो उसे उसके संस्तुत कर्मों का पालन करना चाहिए, किंतु यदि कोई इतना भाग्यशाली है कि वह आध्यात्मिक पहचान के स्तर तक उठकर समाज या जाति विशेष में जन्म की उपाधि से ऊपर उठ जाता है, तब उसका स्वधर्म या कर्म एकमात्र भगवान की सेवा रह जाता है। जो कृष्ण भक्ति में उन्नत है अर्थात आगे बढ़ा हुआ है, उसका वास्तविक कर्म भगवान की सेवा करना है। जब तक वह देहात्म बुद्धि में रहा आता है तब तक वह सामाजिक परिपाटी के अनुसार कर्म करता है, किंतु आध्यात्मिक पद तक उठ जाने पर उसे केवल भगवान की सेवा करनी चाहिए। यही स्वधर्म का वास्तविक कार्यान्वयन है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरव श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं को दोहराएंगे, कृपया सब लोग एक साथ बोलें।
सर्वशास्त्राभिपीयूष सर्ववेदैक सत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्य श्रीकृष्णा परिवर्तिता परमानन्दपाठाय प्रेम वर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमोस्तुते। मदेक बंधो मत्संगी मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते। असाधु साधु तदाइन अति नीचोचतः कर हानमुंच कदाचिन्मा प्रेमनारकंठयोस्वरा।
हरे कृष्ण। पुनः इस अध्याय का शीर्षक है भक्ति साधना के लिए भगवान कपिल के आदेश। तो भगवान यहां पर कैसे व्यक्ति को साधना करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, वैसे तो वर्णन एक योगी का कर रहे हैं, योग क्रिया का भी वर्णन कर रहे हैं, जैसे अष्टांग योग इत्यादि, उन सब का अलग अलग श्लोकों में वर्णन करते हैं कि कैसे व्यक्ति को एक स्तर से दूसरे, यम नियम प्राणायाम आसन प्राणायाम स्थापना इत्यादि जो भी धारणा ध्यान समाधि इन सब का वर्णन कर रहे हैं, प्रत्याहार, और उन सब को भक्ति में कैसे हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे यम नियम, यम नियम अर्थात कुछ चीजों का पालन करना कुछ का नहीं करना, आसन या फिर प्राणायाम, इन सब का वर्णन वो करेंगे और अंत में वो वर्णन करेंगे कि कैसे व्यक्ति को भगवान के रूप पर ध्यान करना चाहिए और वो विधि बताते हैं कि कैसे भगवान को देखना चाहिए। तो ऐसे ये अध्याय में वर्णन कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश हैं। जैसे पिछले अध्यायों में भी हमने देखा कि भगवान ने दिए कि भक्त को क्या गुण उत्पन्न करने चाहिए, तो उन्हीं को आगे बता रहे हैं। तो कुछ गुण वो दोहरा रहे हैं जो पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं और कुछ गुण और बोल रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग उन सारे गुणों की चर्चा करेंगे। जिन गुणों की चर्चा हम कर चुके हैं उनको नहीं करेंगे, आगे अन्य गुणों की चर्चा हम लोग करेंगे। तो यहां श्लोक में हम लोग देखते हैं कि भगवान गुण, पहला गुण बता रहे हैं कि व्यक्ति को अपने नियत कर्तव्य करने चाहिए, दूसरे के कर्तव्यों में नहीं जाना चाहिए। तो एक भक्त के लिए बहुत आवश्यक है, जब तक वो वर्णाश्रम पद्धति में है तो वर्णाश्रम पद्धति के अनुसार, अगर वो ब्राह्मण है, वैश्य है, क्षत्रिय है, शूद्र है, अपने अपने स्वभाव के अनुसार स्थिति के अनुसार कार्य करे। और फिर जैसे प्रभुपाद समझा रहे हैं कि स्वधर्म, सच्चा स्वधर्म क्या है, स्वधर्म दो प्रकार के होते हैं। जब व्यक्ति स्व अर्थात खुद को शरीर मानता है तो उसका स्वधर्म वर्णाश्रम होता है, जहां जिस वर्ण में है, जिसमें उसने जन्म लिया है। लेकिन जब व्यक्ति अपने आप को स्व अर्थात आत्मा मानता है तो फिर उसका एक ही धर्म होता है, भगवान की सेवा। वैसे वर्णाश्रम का भी उद्देश्य भगवान की सेवा ही है। तो मूल धर्म स्वधर्म भगवान की सेवा है और उसके लिए आश्रम बनाए गए हैं, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। व्यक्ति जिस आश्रम में स्थित है उसे उस आश्रम के कर्तव्यों को करना चाहिए, ब्रह्मचारियों को गृहस्थ के कर्तव्यों की ओर नहीं झुकना चाहिए, गृहस्थों को वानप्रस्थ के कर्तव्य की ओर उस समय नहीं झुकना चाहिए, वानप्रस्थ को अपने स्थान पर रहते हुए सन्यास की तैयारी करनी चाहिए और सन्यासी को किसी अन्य आश्रम के
नियमों को ना लेते हुए केवल संन्यास धर्म के नियम का पालन करना चाहिए। तो स्वधर्म अगर हम चर्चा करें तो जब वो आत्मा के स्तर पर है तो एक ही स्वधर्म है, भगवान की सेवा। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, एक ही स्वधर्म है, क्योंकि स्व मतलब आत्मा। लेकिन जब स्व को शरीर मानते हैं तो बहुत धर्म हो सकते हैं, क्योंकि शरीर बदलते रहते हैं, लेकिन जिस जगह पर है उस जगह के कर्तव्य को करना चाहिए। दूसरी शब्दों में, अगर हम लोग भक्त हैं, भक्ति में पालन कर रहे हैं, तो हमें जो कर्तव्य दिए गए हैं उसको करना चाहिए। हम किसी भी वर्ण के हों, किसी भी जाति के हों, लेकिन जब भक्त बन गए, मान लीजिए आप ब्राह्मण कुल से आ रहे हैं, तथा कथित ब्राह्मण कुल, और आपको भक्ति में जब आप मंदिर में आते हो, आपके जो अधिकारी हैं आपको झाड़ू पोछा लगाने के लिए कहते हैं, ऐसा शूद्र का काम है। हम आए हैं ब्राह्मण कुल से आठ आने का धागा पहनकर, और हमें कहा जा रहा है कि हम झाड़ू लगाएं, तो क्या स्वधर्म है? यहां लिखा है अपना स्वधर्म करना चाहिए, दूसरे का नहीं, राइट? तो ब्राह्मण कह सकता है, भगवद गीता में भी भगवान ने कहा है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मो भयावह, कि अपना धर्म करना श्रेष्ठ है, दूसरे का धर्म करोगे तो भयभीत रहोगे, भयावह। तो फिर यहां अब ब्राह्मण कुल से आए हैं और यहां कहा जा रहा है चलो झाड़ू लो लगाओ, ये तो शूद्र का काम है, तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। यहां कह रहे अपना धर्म नहीं त्यागना चाहिए, भगवान कह रहे स्वधर्म, स्वधर्म को समझना चाहिए। तो स्वधर्म कैसे पालन होगा आत्मा के स्तर पर, हमें तो नहीं पता हमारा क्या आत्मा के स्तर पर पालन है, बताइए आपको पता है क्या संबंध है? आध्यात्मिक जगत में आप झाड़ू लगाते हैं या क्या करते हैं, बताइए, ड्रेसिंग करते हैं भगवान की? स्वधर्म किसको पता है? हमें तो नहीं पता, आप लोग ऊंचे स्तर पर होंगे, आप सब जानते होंगे आपका स्वधर्म। गुरु से सुनना चाहिए, इसीलिए भक्ति में हमारा पहला स्वधर्म ये हो जाता है कि गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया ऐक्य आर न करी हम अने आशा। इसीलिए दूसरा यहां पर नियम वो दे रहे हैं कि आध्यात्मिक गुरु की सेवा, सेवा ही नहीं अर्चना, पूजा करनी चाहिए आध्यात्मिक गुरु की। गुरु अर्थात जो ज्ञान दे, इसीलिए उनको आत्मवित कहा गया है। यहां पर प्रभुपाद समझा रहे हैं श्लोक में, आत्मवित चरण अर्चनम, जो व्यक्ति आत्मवित है, आत्मवित अर्थात जो ज्ञानी है, जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, जो तत्व को जानते हैं उसको आत्मवित्त कहते हैं। तो ऐसे आत्मवित्त व्यक्ति से हमें सुनना नहीं चाहिए, सुनना तो चाहिए ही, लेकिन चरण अर्चनम, उनके चरणों की पूजा करनी चाहिए, ऐसा भगवान कह रहे हैं, स्वयं भगवान कह रहे हैं, ये कोई ऐसे दूसरे व्यक्ति ने नहीं कहा, स्वयं भगवान कहते हैं। आत्मवित चरण अर्चनम, ऐसे व्यक्तियों की चरणों की अर्चना करनी चाहिए। तो वो हमें समझाएंगे कि स्वधर्म क्या है। इसीलिए जब हमें हमारे अधिकारी कहें, हमारे गुरु कहें ये सेवा करो, हमें जानना चाहिए कि ये हमें स्वधर्म में लगा रहे हैं। तो भले इस जगत में हम ब्राह्मण हो सकते हैं, किसी भी कुल में जन्म ले सकते हैं, वो हमारा स्वधर्म समाप्त हो जाता है जब हम भक्ति का पालन करते हैं। ऐसे स्वधर्म को जब त्यागा जाता है भक्ति के लिए, तब फिर व्यक्ति को पाप नहीं लगता। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसने अपना ब्राह्मण का धर्म त्याग कर वो झाड़ू लगा रहा है भगवान के लिए, तो क्या ये गलत है? क्या उसका पतन हो गया? नहीं, ये उसके लिए बड़े गर्व की बात है कि उसका सही स्थिति में स्थापन हो गया, वो बैठ गया आके सही स्थिति में भगवान के सेवक के रूप में। तो असली स्वधर्म ये है कि हम भगवान की भक्ति में लगे। तो एक स्वधर्म होता है शरीर के स्तर पर, दूसरा स्वधर्म होता है आत्मा के स्तर पर। शरीर का स्वधर्म का उद्देश्य है आत्मा के स्वधर्म तक ले जाना, ये शरीर के स्वधर्म का उद्देश्य होना चाहिए। शरीर के स्वधर्म का अगर उद्देश्य वो नहीं है तो वो झूठा स्वधर्म है, वो धोखा है। और ऐसे धर्म को कैतब धर्म कहा गया भागवत में। प्रभुपाद कहते हैं ऐसे धर्म को झाड़ू मारकर बाहर निकाल दिया गया भागवत से। भागवत ऐसे धर्म की बात नहीं करता। तो स्वधर्म, तो स्वधर्म कैसे आएगा? गुरु से सीखना चाहिए। तो शुरुआत में हमें कृष्ण दास बनने का प्रयास नहीं करना है। हमें यह नहीं सोचना मैं भक्त हो गया, स्टैंप लग गया अतुल कृष्ण दास, तो अब मैं कृष्ण का दास हूं। नहीं, कृष्ण का दास बनने का प्रयास करेंगे तो कभी कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे। हमें शुरुआत में गुरुदास बनना है, बस एक ही हमारी पहचान होनी चाहिए, हम गुरु के दास हैं। और इसका प्रमाण श्रील प्रभुपाद के शिष्य, जिस समय श्रील प्रभुपाद ने यह आंदोलन प्रारंभ किया तो उस समय उन शिष्यों को कुछ नहीं पता था, कोई ज्ञान नहीं था कृष्ण कौन है, भक्ति क्या है, स्वधर्म क्या है, कुछ पता नहीं था। लेकिन क्या किया उन्होंने, एक ही स्थिति को पालन किया, गुरु दास। वो क्या बने? वो केवल अपने गुरु के दास बने, बस। कुछ नहीं सीखा उन्होंने और कुछ। प्रभुपाद ने जो कहा उन्होंने कर दिया। प्रभुपाद ने कहा चाइना में जाकर प्रचार करो, वो चाइना में चले गए। पाकिस्तान में प्रचार करो, पाकिस्तान चले गए। रशिया में जाओ, कहीं भी जाओ, प्रभुपाद ने कहा, उन्होंने उन शब्दों को शतशः स्वीकार किया। यही एक योग्यता हुई उनकी शुद्ध भक्ति बनने की। आज वो सारे जगत में प्रचार कर रहे हैं शुद्ध भक्ति का प्रचार, खुद भी पालन कर रहे हैं और लोगों को भी सिखला रहे हैं। लेकिन इस स्तर तक वो कैसे पहुंचे? क्या पहले आते ही वो कृष्णदास बने? नहीं, गुरुदास। जो गुरु ने कहा, जो प्रभुपाद ने कहा, उन्होंने उसे अपना जीवन माना। ऐसे कई उदाहरण हैं कि भक्त करना नहीं चाहते थे लेकिन प्रभुपाद ने कहा उन्होंने किया, इच्छा भी नहीं थी। जैसे तमाल कृष्ण महाराज, प्रभुपाद उनसे जब कुछ कहते और उनको कुछ मना करना होता तो अमेरिका में चाइना को बहुत नीचा देखा जाता। तो अमेरिका में एक कहावत है कि अगर कोई कहे ये करो तो कहे उससे करने से अच्छा तो मैं चाइना चला जाऊं, ऐसे एक कहावत है ना, बेटर आई गो टू चाइना। जैसे यहां पर अगर कोई कुछ आपको काम करने से कहे तो आप कहे उससे अच्छा तो मैं जेल में जाकर बैठ जाऊं, ऐसे ऐसे वो कहावत है कि बेटर आई गो टू चाइना, उससे अच्छा तो मैं चाइना में चला जाऊं। तो ऐसे ही तमाल कृष्ण महाराज एक बार प्रभुपाद से बात कर रहे थे, प्रभुपाद उन्हें कुछ काम करने के लिए कह रहे थे, और क्योंकि अमेरिका में पैदा हुए हैं आदत है, उनके मुख से निकल गया प्रभुपाद बेटर आई गो टू चाइना, ये करने से अच्छा है मैं चाइना चला जाऊं। प्रभुपाद ने कहा वेरी गुड, गो टू चाइना, बहुत अच्छा है, चाइना जो आप प्रचार करो। तुम्हारे के समाज में नो भारत, प्रभुपाद दिस वॉज जस्ट सेइंग, प्रभुपाद नहीं, नाउ यू गो टू चाइना। और फिर गए तमाल कृष्ण महाराज ने चाइना में प्रचार किया, बहुत अच्छा प्रचार हुआ। तो देखिए ये है गुरु के आदेशों का पालन करना। तो इसीलिए गुरु की पूजा करनी चाहिए, गुरु की अर्चना होनी चाहिए। हमारा भाव वो होना चाहिए, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरव तस्यैत कथितम अर्थम प्रकाशन्ते महात्मनः। आज इन लोगों के हृदय में ये जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है, ये जो शुद्ध भक्ति उत्पन्न हुई है, किस लिए? यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरव। जैसी भक्ति वो भगवान की करते हैं वैसी ही गुरु की करते हैं, और इसीलिए वो ज्ञान उनके हृदय में ऐसा कहा गया कि यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, जो जैसी गुरु की भक्ति करता है वैसी अगर भगवान की या जैसी भगवान की करता है वैसी गुरु की करे तो उसके हृदय में शास्त्रों का सार, शास्त्रों का ज्ञान स्वयं प्रकाशित हो जाता है। फिर उसको कोई नोट्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, स्वयं प्रकाशमान हो जाता है। तो इसे कहते हैं गुरु। तो इसीलिए यहां पर प्रभुपाद कहते हैं शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, गुरु की अर्चना करनी चाहिए। तो गुरु की अर्चना किस तरह से कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं गुरु की पूजा करने के? पहला तरीका एक्चुअल पूजा करना, जैसे हम लोग प्रभुपाद की पूजा करते हैं, हम लोग गुरु पूजा कहते हैं इसको। तो दरअसल वो गुरु पूजा नहीं, वो प्रभुपाद पूजा है, हम लोग प्रभुपाद जी की पूजा कर रहे हैं। तो गुरु की पूजा एक कर सकते हैं सीधे पूजा करके, दूसरा कर सकते हैं उनकी सेवा करके। जब गुरु हों तो गुरु की सेवा की जाए, जैसे प्रभुपाद के शिष्यों ने प्रभुपाद की बहुत सेवा की, तो दूसरा हम गुरु की सेवा करके कर सकते हैं। तीसरा गुरु का, गुरु की पूजा की जाती है उनके आदेशों का पालन करके, क्योंकि अगर आप किसी की पूजा कर रहे हैं और वो व्यक्ति कोई आदेश देता है और आप कहते नहीं ये मेरे से नहीं होगा, कुछ और बताइए, नहीं ये नहीं कुछ और, वो असली पूजा नहीं है। असली पूजा है गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त तिकोरिया एक्या आर न करी हमने आशा, कोई और आशा नहीं। तो ये चीज हमें भक्ति में आगे ले जाएगी। किसी के हृदय में अगर कोई बहुत बड़ा पंडित नहीं है, शास्त्रों को नहीं जानता, लेकिन अगर गुरु की पूजा करता है, गुरु में विश्वास है, तब फिर वो प्रगति करे, भगवान के धाम निश्चित जाएगा। प्रभुपाद ने इसको कहा है कि आप लोगों की योग्यता नहीं है, मैं आपको पीछे के दरवाजे से ले जाऊंगा। भक्तों को मंदिर के या आध्यात्मिक जगत के दोनों रास्ते पता है, एक सीधा रास्ता और एक पीछे का दरवाजा जो केवल विशेष लोगों के लिए होता, सबको पता नहीं होता। प्रभुपाद कहते हैं मैं आपको उस दरवाजे से अंदर ले जाऊंगा, चिंता मत करो। हमारे लिए ये एक ही आशा है और कोई आशा नहीं है। हम लोग तो कितने भी भक्ति कर लें शुद्धता आने वाली नहीं है, तो एक ही आशा है बस, प्रभुपाद की धोती पकड़े रहेंगे, वो भी जाएंगे, पीछे पीछे हम लोग भी चले जाएंगे, एक ही आशा। तो इसीलिए आत्मवित चरण अर्चनम। और क्यों चरण अर्चनम लिखा है, क्यों सीधे अर्चनम नहीं लिखा कि जो भक्त होते हैं उनकी पूजा करनी चाहिए, क्यों चरण अर्चनम, किस भाव में पूजा करनी चाहिए? चरण अर्चनम मतलब उनके चरणों की पूजा, अर्थात अपने आप को बड़ा निम्न मानकर, गुरोर हितम, गुरु के हित के लिए भगवान की भक्ति में लगना, अपने आप को बहुत नीच मानकर। जैसे हम लोग सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं को दोहराते हैं, असाधु साधु तदाइन अति नीचोचतः करा, अति नीच व्यक्ति को भी हे श्रीमद् भागवत आप ऊंचा स्थल प्रदान करते हैं। मदेक बंधु मत संगीन मत गुरु मन महाधना। तो गुरु का क्या कार्य है, जैसे वो श्रीमद् भागवत को कह रहे हैं कि आप ही गुरु हैं, तो इसी तरह गुरु अति नीच उच्चतः करा, ऊंचा स्थान प्रदान करते हैं। इसीलिए अर्चना करनी चाहिए। फिर आगे भगवान कपिल समझाते हैं कि जो ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च, ग्राम्य धर्म को त्याग देना। ग्राम्य धर्म क्या है, जो हमारी परंपराएं चली आ रही हैं, जो हमारे कुल की परंपराएं चली आ रही हैं, जो हमारे समाज की परंपराएं चली आ रही हैं, इस सबको ग्राम्य धर्म कहा गया। ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च, क्यों इन सबको त्याग देना चाहिए, तो धर्म है। दरअसल लोगों से जब शुद्ध भक्ति के मार्ग का प्रचार किया जाता है तो तो सबसे बड़ा कष्ट यही आता है कि जब आप किसी को जाकर बताएं कि आप पाप कर रहे हो, आपको पाप को त्यागना है, व्यक्ति तैयार होता है पाप त्यागने के लिए। लेकिन अगर किसी को जाकर बताया जाए आप धर्म कर रहे हो, हाँ ये मानते हैं आपका कुल धर्म है, ये आपका जाति धर्म है, ये आपका समाज धर्म है, त्याग दीजिए, मुश्किल होता है ना। तो धर्म को कैसे त्यागें? अरे ठीक है आपने कहा अधर्म को त्यागना, वो ठीक है, लेकिन धर्म को, यहां भगवान कपिल कहते हैं ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च, ग्राम्य धर्म का निवृत्ति, निवृत्ति यानी त्यागना चाहिए उसको। कौन सा धर्म? कैतव धर्म। क्यों? क्योंकि वो धर्म जो हमें भगवान तक नहीं ले जाए, जैसे माता देवहूति ने पिछले अध्यायों के श्लोक में कहा था, नेह यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवन अपि मृतो हि स। तो वो धर्म जो हमें भगवान की ओर नहीं ले जा रहा, मोक्ष की ओर नहीं ले जा रहा, इस जगत से छुटकारा दिलाने की ओर नहीं ले जा रहा, ऐसे सारे धर्म को त्याग दीजिए। ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च। कौन कौन से ऐसे धर्म हैं? लोग कुल धर्म का पालन करते हैं, किस लिए? कुल से आसक्ति के लिए। हमारा कुल, हमारी कुल देवी, हमारा कुल देवता, ये आसक्ति बढ़ा रहा है, कहां आपको मोक्ष की ओर ले जा रहा है। तो फिर ऐसे धर्म का लाभ क्या है? धर्म का अर्थ है जो हमें हमारी गिरी हुई स्थिति से ऊपर उठाए, धारण करे, उसे धर्म कहते हैं। जो हमें गिराए नीचे आसक्ति में, भोगों में, इस भौतिक जगत में, वो धारण नहीं कर रहा है, उसने तो परित्याग कर दिया है, ऐसे धर्म को धर्म नहीं कहा जाता। धर्म अर्थात धारण करना चाहिए। क्या धारण करना चाहिए उसको? उसको सच्चे सिद्धांतों को धारण करना चाहिए, ऐसे सिद्धांत जो कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ाएं, ऐसे सिद्धांत जो इस जगत के प्रति अनासक्ति दिलाएं, ऐसे सिद्धांत जो भोगों से दूर रखें, वो सच्चा धर्म है। किसी धर्म का पालन करते हुए आपके हृदय में इंद्रिय तृप्ति की इच्छा बढ़ रही है, धर्म नहीं है, सच्चा धर्म नहीं है। किसी धर्म का पालन करते हुए आपकी आसक्ति बढ़ रही है इस जगत से, सच्चा धर्म नहीं है। सच्चा धर्म वो है जो हमें श्री कृष्ण के प्रति आसक्त कराए। सच्चा धर्म वो है जो इस जगत से अनासक्ति उत्पन्न करे। सच्चा धर्म वो है जो हमारे हृदय के सारे कलमश को दूर करके भगवान के सुंदर स्वरूप को हमारे हृदय में स्थापित करे। वो सच्चा धर्म है। और बाकी सारे झूठे कैतव धोखेबाज धर्म है, छल धर्म है, अपधर्म है, विधर्म है, अलग अलग श्रेणियां हैं धर्म की। किसी धर्म में भोग सिखलाया जाता है, किसी धर्म में आपको भगवान बताया जाता है, ये सिखाया जाता है कि धर्म का पालन भगवान बनने के लिए कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए, दान धर्म कीजिए, निश्चित एक दिन आप भगवान बन जाएंगे। धोखा है, छल है। कितने ही जन्मों तक अच्छे कार्य करते रहिए, भगवान नहीं बन सकते, क्योंकि भगवान बना नहीं जाता। भगवान भगवान है। तो वो धर्म धोखा है जो आपको सिखला रहा है कि ये कार्य कीजिए आप भगवान बनेंगे। वो धर्म धोखा है जो आपको सिखलाता है कि ये कार्य कीजिए आपका जीवन, ये भौतिक जीवन सुखी हो जाएगा। भौतिक जीवन सुखी हो ही नहीं सकता। दुखालयम अशाश्वतम। कैसे सुखी रह सकता है व्यक्ति इस जगत में? तो ऐसे सभी धर्मों को, छल धर्मों को छोड़ना। कभी कभी लोग किसी धर्म का, आजकल एक ये फैशन हो गया है कि लोग एक नए धर्म को प्रस्तुत करते हैं और सारे लोग उनका पालन करने लगते हैं। सनातन धर्म को त्याग देते हैं, शास्त्रों को त्याग देते हैं, एक नए धर्म का प्रारंभ करते हैं। और उसका आधार क्या है? शास्त्र नहीं, आचार्य नहीं, गुरु नहीं, तो क्या आधार है? मैं, जो मैं शुरू कर रहा हूं धर्म, मैंने जो कह दिया वो धर्म है? नहीं, भागवत कहता है जो भगवान ने कहा वो धर्म है। संसिद्धिम हरि तोषणम, भगवान की संतुष्टि के लिए किया गया सच्चा धर्म है। तो कई लोग धर्म को बना देते हैं और आजकल लोग उनके पीछे भागते हैं। क्यों? क्योंकि उस धर्म में नियम नहीं है, कोई कठोरता नहीं है। आप जैसे भोग कर रहे हो, जैसे हो, बस करते रहो, मुझे गुरु मानो, मुझे भगवान मानो, बस मेरी फोटो लगाओ अपने शरीर में कहीं पर, पहनो उसको, कोई माला बनाकर पहनो, मेरे नाम की जय जयकार करो, बस और कुछ नहीं करना है, खाओ पियो मजा करो, वो मैं देखने वाला नहीं हूं। तो जब ऐसा धर्म आता है सब पीछे भागते हैं, ये बड़े आदमी है। क्यों? ये सच्चा धर्म बता रहा है। ये लोग कहते ये मत करो वो मत करो, अरे भगवान ने शरीर दिया आनंद लेने के लिए, और ये लोग उससे रोकते हैं। ये धर्म अच्छा नहीं है। अच्छा धर्म आनंद वाला धर्म, जहां आनंद हो। सच्चा आनंद नहीं है, शरीर के स्तर पर लिया गया कोई आनंद सच्चा आनंद नहीं हो सकता। अगर आप अपनी बुद्धि से विवेचना करें तो इस जगत में दुख के करोड़ों करोड़ों कारण हैं, करोड़ों मार्ग हैं दुख आने के, और सुख के बहुत थोड़े मार्ग हैं सुख प्राप्ति के। लेकिन दुखी, हम भौतिक जगत की बात करें तो दुख कैसे आता है किसी को नहीं पता। कौन कब दुख लाएगा कोई नहीं जानता। जैसे पेरिस में एक बहुत बड़ा म्यूजियम है, बहुत बहुत विशाल म्यूजियम, कई एकर्स में फैला हुआ, इतना बड़ा है कि उसमें पूरा घूमने में कई घंटे लगते हैं, इतना बड़ा म्यूजियम है। वो पहले एक समय राजा का महल था। आप अगर उसको देखेंगे तो उसमें सब जगह एक एक कोना इतना बढ़िया बना हुआ है, इतनी अच्छी कलाकारी है, केवल महल देखकर पता चलता कि क्या ऐश्वर्य होगा राजा का। तो वो राजा का महल था, वो अपने मित्रों को बुलाया करता था और लोगों को बुलाता था, उनको सब खिलाना पिलाना बहुत उनका, क्यों क्यों बुलाता था? दिखाने के लिए। हम लोग जब कुछ बना लेते हैं तो हम लोग दिखाना चाहते हैं, है ना? बना ही क्यों, नया कपड़ा पहनकर कोई आता है मंदिर में ही, मान लीजिए कोई नया कपड़ा, नई धोती, या धोती कुर्ते में तो पता नहीं चलता है कि नया है या नहीं है, समझिए कोई नई पैंट शर्ट पहनकर आता है, या माता जी कोई नए कपड़े पहनकर आते हैं एकदम नया है, और कोई कोई उनकी तारीफ ही नहीं करे, कोई देखे ही नहीं, तो उसको लगेगा क्या हुआ। थोड़े समय इंतजार करेगा, फिर किसी से पूछ ही लेगा कि कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है, कुछ खराब है, नहीं नहीं बढ़िया एकदम नया, हाँ हाँ नया, यही तो सुनने के लिए इंतजार कर रहा था इतने समय तक। तो हम कुछ बनाते हैं तो दिखाना चाहते हैं, किस लिए? लोग तारीफ करें। इसलिए बहुत लोगों को बुलाता था, आइए, वो आते थे उसका महल देखते थे, वाह 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 क्या आपका महल है, क्या आपका ऐश है, क्या आपका ऐश्वर्य है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बड़ा खुश हो जाता था, खिलाता पिलाता। लेकिन आप जान लीजिए, इस जगत में जितने भी लोग आपकी तारीफ करते हैं हृदय से द्वेष करते हैं, द्वेषी हैं। बाहरी दृष्टि से वो लोग बोल रहे थे वाह वाह क्या महल है आपका, क्या ऐश्वर्य है, हृदय में द्वेष बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के हृदय में द्वेष बढ़ता है दूसरे के सुख को देखकर, मेरे पास ये नहीं है इसके पास कैसे आ गया, इसलिए हम उसको नीचे खींचना चाहते हैं। तो उन्हीं लोगों ने जो उसके आया करते थे, उसके मित्र थे इत्यादि, उन्होंने ही उसकी हत्या कर दी, उसकी पत्नी का सर काट दिया। अब बताइए, किसी का सर ही नहीं रहेगा तो इतना बड़ा महल लेके करेगा क्या, देखेगा क्या, सर काट दिया। तो ये इस जगत का आनंद है। हम लोग जिसमें आनंद लेते हैं जिस धर्म का पालन, तो ऐसा धर्म जो ये सिखाए कि आनंद लो, सच्चा आनंद नहीं, सच्चा धर्म नहीं। सच्चा धर्म ये सिखलाता है कि जो भगवान की कृपा से मिला है उसमें संतुष्ट रहो और सारा समय भगवान की सेवा में लगा। अगर ये दो सिद्धांत नहीं है किसी धर्म में, भगवान की सेवा नहीं सिखला रहे और भगवान की कृपा को समझने का मार्ग नहीं दिखला रहे, झूठा धर्म है, कैतव्य धर्म है, त्याग देना चाहिए। तो इसीलिए यहां भगवान कपिल कहते हैं ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च, उसको त्याग देना चाहिए व्यक्ति को। तो इसको बड़ी अच्छी तरह समझ लीजिए। हमारे बहुत से धर्म हो सकते हैं, कुल धर्म, जाति धर्म, ग्राम्य धर्म, समाज धर्म, राष्ट्र धर्म, लेकिन ये सब ग्राम्य धर्म है और व्यक्ति डर लगता है उनको त्यागने के लिए। व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहता अपने अपने धर्म को। कभी कभी लोग कहते मैं नहीं करना चाहता, मेरे रिश्तेदार कर रहे हैं, मैं तो केवल भाग ले रहा हूं उसमें। नहीं लेना है, समझाइए रिश्तेदारों को, झूठा धर्म है, कब तक पालन करते रहेंगे इसका, मृत्यु आ जाएगी फिर क्या करेंगे। सिर्फ त्यागना चाहिए उस धर्म को, ऐसा धर्म जो भगवान से परे ले जाए, ऐसा धर्म जो भोगों में लगाए, ऐसा धर्म जो केवल इस जगत में रहने, बने रहने के लिए हमें प्रेरित करे। त्याग दीजिए उसको, जब तक पकड़े रहेंगे कष्ट होगा, कुछ और नहीं मिलेगा। ऐसे धर्म से कुछ नहीं मिलता, केवल कष्ट में बने रहने के लिए एक जीवन और बढ़ जाता है। भक्ति सिखलाती है समाप्त कीजिए जन्म मृत्यु का चक्र, और ऐसे झूठे धर्म सिखलाते हैं ये काम कीजिए अगले जन्म में आपको धन मिलेगा। अरे क्या लाभ है, हमें तो अगला जन्म ही नहीं चाहिए, धन लेके क्या करेंगे। तो ऐसे धर्म को हमें त्याग देना चाहिए। तो किसी भी नाम से हो, चाहे कुल धर्म हो, जाति धर्म हो, समाज धर्म हो, त्याग दीजिए उसको। किस लिए? क्योंकि वो मोक्ष का मार्ग नहीं दिखला रहा। हां, अगर आपका कुल धर्म आपको भगवान कृष्ण की ओर ले जा रहा है, मोक्ष का मार्ग दिखला रहा है, तो त्यागने की आवश्यकता नहीं है। अनुकूल्यस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम्, जो अनुकूल है भक्ति के लिए उसको त्यागने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये सारे धर्म ऐसे हैं नहीं, इसीलिए भागवत में कहते धर्म प्रोजित कैतवत्र, सब झूठे धर्मों को फेंको बाहर। अब तो कम से कम इतने मजबूत बनो कि आप उस धर्म को त्याग कर सच्चे धर्म का पालन कर सके, और वो कब आएगा, जब हम गुरु के आदेशों का पालन करेंगे। तो ऐसे भगवान कपिल बताते हैं ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रतिस्तथा, जिस धर्म में मोक्ष के प्रति रति हो उसको स्वीकार करना चाहिए। मित मेध्यादनम शश्वत अविक्त क्षेम सेवनम, तो व्यक्ति को अलग एकांतवास में रहना चाहिए। इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि कैसे, आगे वर्णन करते हैं कि व्यक्ति को अहिंसा का पालन करना चाहिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए, भक्तों के रूप में जानने के लिए। अहिंसा क्या है, किसे अहिंसा कहते हैं? अहिंसा तीन स्तरों पर की जाती है, एक शरीर के स्तर पर, दूसरी मन के स्तर पर, और तीसरी आत्मा के स्तर पर। हिंसा ये तीनों स्तरों पर होती है। जैसे किसी को आपने मार दिया, चाकू मारा, आक्रमण किया, शरीर पे मारा, थप्पड़ मारा, ये सब शरीर के लिए है, ये पहले स्तर की हिंसा है। दूसरे स्तर की हिंसा मन के लिए, अर्थात आपने किसी का अपमान कर दिया, किसी को बुरे शब्द कह दिए, अनजाने में भी कह दिए लेकिन बुरे शब्द कह दिए, अपमान किया, बुरे शब्द कहे, किसी को नीचा दिखाया, किसी की निंदा की, ये मन के स्तर की हिंसा है। आप उस व्यक्ति के प्रति हिंसा कर रहे हैं। अगर आपके शब्दों से, आपके कार्यों से अगर किसी का भी हृदय द्रवित हो रहा है तो वो हिंसा, और वो शरीर के स्तर से बड़ी हिंसा है। शरीर के तो ठीक है, काट दिया वो दवाई लगा लेता है, 15 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपने किसी के हृदय को तोड़ दिया, आपने अपमान किया, निंदा की, ऐसे शब्दों को बोला जो वो हमेशा जीवन भर याद रखता, तो इसलिए बहुत बड़ी, क्योंकि वो व्यक्ति आपके प्रति घृणा करने लगेगा और फिर उसको निकालना बहुत कठिन होगा। इसलिए बड़ा सावधान होना चाहिए भक्तों को एक दूसरे से और बाहर वालों से भी बात करते हुए। हमारे शब्द कैसे हों, हम किसी के प्रति हिंसा नहीं करें शब्दों से भी। शब्दों की हिंसा शस्त्रों के हिंसा से बड़ी हिंसा है। आप किसी को मारते हैं, ठीक है, थोड़े समय में वो ठीक हो जाता है, लेकिन जब आप शब्द एक बार बोल देते हैं, शब्दों से मारते हैं किसी को, हिंसा करते हैं, वो व्यक्ति जीवन भर आपका शत्रु बना रहता है। फिर आप कितना ही प्रयास क्यों ना कर लीजिए, यानी थप्पड़ मारी और सॉरी बोलिए, फिर थप्पड़ मारी और सॉरी बोलिए, कुछ होने वाला है? वो व्यक्ति थप्पड़ खा लेगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आपने उसका अपमान किया कि अरे तुम्हारे अंदर क्या है, तुम कैसे व्यक्ति हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम गरीब आदमी हो, तुम ये हो। व्यक्ति उसको हमेशा रखेगा अपने हृदय में कि इस व्यक्ति ने मेरे हृदय को तोड़ा। इसलिए शब्द कैसे बोलने हैं बहुत ध्यान रखना चाहिए, और खास करके भक्तों में। हम लोग कभी कभी उत्साह में आकर बहुत कुछ बोल जाते हैं, व्यक्ति उसको याद रखता है। ये हिंसा है मन के स्तर की, जहां हम किसी व्यक्ति का अपमान करते हैं, तो भक्तों में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शरीर के स्तर पर अपमान तो हम करें ही नहीं, अर्थात किसी की हत्या तो करें ही नहीं, लेकिन साथ साथ शब्दों से भी। ये बहुत बड़ा वैष्णव अपराध है, वैष्णव निंदा। जब हम भगवान के नाम के जप करना प्रारंभ करते हैं, 10 अपराधों को कहते हैं। पहला है वैष्णव निंदा, सताम निंदा। वैष्णवों की निंदा अगर आप करते हैं, भले बाद में जाकर आप हाँ ठीक है गलती हो गई, लेकिन भगवान स्वीकार नहीं करते। हम वैष्णव हैं, वो क्षमा भी कर देते हैं, और वैष्णवों की क्षमा ही केवल हमारे लिए एक उपाय है। तो इसीलिए हर एक व्यक्ति के प्रति, और ये नहीं सोचना चाहिए वैष्णव मतलब श्रील प्रभुपाद, तो हम उनकी निंदा नहीं करेंगे, बाकी सब तो आराम से, कोई वैष्णव नहीं है, ये वैष्णव है, अरे ये ऐसी बातें करता है, ये वैष्णव है, वैष्णव के गुण तो ऐसे होने चाहिए, उसकी आंखों से आंसू आना चाहिए कृष्ण का नाम निकलते ही, शरीर में अष्ट सात्विक विकार होने चाहिए, बेहोश हो जाना चाहिए जैसे चैतन्य महाप्रभु हुए थे भगवान को देखते ही, अगर नहीं तो कहां का वैष्णव। ये हमारी परिभाषा है, और चैतन्य महाप्रभु की परिभाषा क्या है, एक बार अगर किसी के मुख से कृष्ण का नाम निकल गया वो वैष्णव। तो अब जब हम वैष्णव निंदा की बात करते हैं, तो हमें जानना चाहिए किसकी बात कर रहे हैं, केवल प्रभुपाद की नहीं। ये हमारी संस्था में हम प्रभुपाद की बिल्कुल निंदा नहीं करते, हाँ लेकिन बाकी मेरे साथ रहने वाले, मंदिर आने वाले, उनको तो, उनको अभी वैष्णव बनना है, अभी वो बने नहीं, मेरे स्तर तक आए नहीं है। इसीलिए हिंसा का दूसरा स्तर है मन, और हिंसा का तीसरा स्तर है आत्मा। जहां आत्मा के प्रति हिंसा की जाती है, आत्मा को मारा जाता है। ईशोपनिषद में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति आत्मा का हत्यारा है, असूर्य नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तामस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के च आत्महनो जना। कोई भी व्यक्ति होने दीजिए, अगर वो आत्मा का हत्यारा है, आत्महनो, हनो यानी मारने वाला, आत्मा को अगर वो आत्मा का हत्यारा है, आत्महनो जना, कहां जाएगा? असूर्य नाम ते लोका। असूर्य नाम तेलो का मतलब ऐसे जगह पर जाएगा जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। असूर्य नाम तेलो का अंधेन तमसावृता, अंधकार है, तमस अज्ञान से आवृत है, ढका हुआ है। तामस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति, प्रत्याभिगच्छन्ति मतलब मृत्यु के बाद, शरीर त्यागने के बाद वहां जाएगा, गच्छन्ति ये के, कोई भी होने दीजिए, नोबेल प्राइज मिला हो या भिखारी हो, ये किच आत्म हनोचना। तो जो भी व्यक्ति आत्मा की हत्या करता है वो व्यक्ति सबसे बड़ी हिंसा कर रहा है। तो एक हिंसा होती है शरीर के स्तर पर, दूसरी होती है मन के स्तर पर, तीसरी होती है आत्मा के स्तर पर। और आत्मा को कैसे मारा जाता है, भगवत गीता में तो भगवान कहते हैं ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर मर जाता है आत्मा नहीं मरती। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो, कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई डुबा नहीं सकता। तो फिर आत्मा को कैसे मारा जाता है, भगवान से दूर ले जाके, आत्मा की वही हत्या है। जो व्यक्ति आत्मा को भगवान से दूर ले जाता है वो आत्मा का हत्यारा कहलाता है, आत्म हनोजना, वो आत्मा का हत्यारा है। और ऐसे सारे हत्यारों के लिए जो आत्मा की हत्या करते हैं, और कौन ले जाता है आत्मा को दूर भगवान से, हम सब भक्ति नहीं करते आत्मा को दूर ले जा रहे हैं भगवान से, मंदिर नहीं आते, दर्शन नहीं करते, जपा नहीं करते, दूर ले जा रहे। तो इसीलिए अहिंसा क्या है, ये तीन प्रकार की हिंसा हमने बताई, अब अहिंसा क्या है। अहिंसा पहले स्तर पर किसी भी व्यक्ति को शारीरिक कष्ट भी नहीं देना, उसके लिए खुद तपस्या करना, दूसरों को सुविधा प्रदान करना, ये अहिंसा है शारीरिक स्तर पर। अपने शरीर के लिए हम कष्ट लेने तैयार हैं लेकिन दूसरों को सुविधा प्रदान करें, ये पहले स्तर की अहिंसा है, किसी को शारीरिक कष्ट भी नहीं देना। दूसरे स्तर की अहिंसा कि हम निंदा बंद करें, हम किसी भी व्यक्ति को मन के भी कष्ट ना दें, अर्थात हम निंदा बंद करें, द्वेष करना कम करें, अपने आप को श्रेष्ठ मानना बंद करें, ये मन के स्तर की अहिंसा है। अन्य भी और चीजें हैं। और आत्मा के स्तर की अहिंसा, लोगों को कृष्ण भक्ति का प्रचार करना, ये सर्वोच्च अहिंसा है, जहां हम लोगों को कृष्ण भक्ति का प्रचार करें ताकि उनको कृष्ण के निकट लाएं, हरेक को भगवान के नाम प्रदान करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोगों की सहन शक्ति को देखकर, अर्थात किस तरह से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं अपनी आंखों को खुला रखने के लिए, हमें आगे बोलने का इच्छा नहीं हो रही है या शक्ति नहीं आ रही है हमारे अंदर कि कैसे हम और कितना आप लोगों के ऊपर अत्याचार करें। अभी पहले इतना अत्याचार हो रहा है कि आपका संघर्ष इतना हो रहा है कि किसी तरह आंख एक बार खुल जाए, कहीं अतुल किशोर बाबू देख नहीं ले कि आंखें बंद हैं, मगर फिर भी वो आंख, तो क्षमा चाहते हैं इस अत्याचार के लिए। लेकिन आवश्यक है, भागवत में भगवान कह रहे हैं, अभी केवल कुछ ही गुणों की चर्चा हुई है, बहुत से और गुणों को उन्होंने कहा है, इसकी चर्चा कल करेंगे।